अध्याय 12 मई चतुर्थ आंदोलन। यह अध्याय दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यावती कॉलेज के प्राध्यापक राजीव वर्मा के द्वारा लिखा गया है। 1919 ईस्वी का मई चतुर्थ आंदोलन 20वीं सदी के चीन के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की पराकाष्ठा था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एक नई संस्कृति की स्थापना इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। मई चतुर्थ आंदोलन एक परंपरा विरोधी राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकल्प की खोज का निर्णायक चरण था। इस आंदोलन ने विश्लेषण और वैज्ञानिक पुनः मूल्यांकन द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहा। मई चतुर्थ आंदोलन उस सांस्कृतिक उफान का शिखर था जो 1915 ईस्वी या उससे पहले ही अंकुरित हो चुका था। इस आंदोलन ने न केवल युवा विद्वानों और मजदूरों को प्रभावित किया, बल्कि 1921 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में भी इसने अहम भूमिका निभाई। इस आंदोलन की यह विशेषता थी कि चीनी इतिहास में पहली बार एक आंदोलन के उद्देश्य गृह और विदेशी दोनों क्षेत्रों से संबंधित थे। अतः मई चतुर्थ आंदोलन ने विदेशी शक्तियों की चीन के प्रति नीति और असमान संधि प्रणाली पर एक साथ कड़ा प्रहार किया। इसने समाज के उन परंपरावादी वर्गों की निंदा की जिन्होंने विदेशी शक्तियों के समक्ष घुटने टेक दिए थे। इसी विशेषता के कारण माओ तजतुंग ने चीनी क्रांति को साम्राज्यवाद विरोधी और सामंतवाद विरोधी की संज्ञा दी, जो अपने आप में एक नई बात। राजनीतिक क्षेत्र में व्यापारी वर्ग एवं मजदूर वर्ग के उदय ने नई राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। प्रथम विश्व युद्ध काल में अच्छी आंतरिक एवं बाह्य स्थितियों के कारण चीनी उद्योग एवं वाणिज्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। आंतरिक रूप से 1912 ईस्वी में गणतंत्र के आगमन से चीन में एक नए काल की शुरुआत हुई थी। गणतंत्र सरकार ने उद्योग और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए अनेक नियम पारित किए थे। बाह्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय उद्योगों को झकझोर कर रख दिया था, जिसके कारण चीन को एशिया के देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने का शानदार मौका मिला। उद्योग धंधों के विकास ने नए बाजार एवं श्रमिक वर्ग को जन्म दिया, जो साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा चीन के शोषण से अवगत थे। वे नई राष्ट्रीयता से वशीभूत होकर चीन को साम्राज्यवादी ताकतों और आंतरिक कलह से बचाना चाहते थे। यद्यपि 1911 ईस्वी की क्रांति छिंग वंश को उखाड़ फेंकने में सफल रही, पर आम आदमी की स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ था। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मंदी और तानाशाही शक्तियों ने राष्ट्र में कलह और अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। 1911 ईस्वी की क्रांति राजनीतिक व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान करने में असफल रही थी। कलहपूर्ण और भ्रष्टाचारी आंतरिक राजनीति और चीन की संप्रभुता पर साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रहार के कारण देशभक्त शक्तियां एकजुट होने लगी। अतः बहुत से विद्वानों ने मई चतुर्थ आंदोलन को 1911 ईस्वी की क्रांति का तार्किक परिणाम माना है। विदेशों से पढ़कर लौटे हुए चीनी विद्यार्थी तत्काल सुधारों के पक्ष में थे। इनमें महत्वपूर्ण विद्यार्थियों के नाम निम्नलिखित थे: फ्रांस से लौटे हुए छन तुशियो और तसाई युएन फेई, जापान से कुओ मोरुओ और लोउ सयुफन, अमेरिका से हु स्र और चियांग मोलिन। इनमें से छन, त्यास और हु शीघ्र ही मई चतुर्थ आंदोलन के अग्रगण्य नेता हो गए। हु स्र ने, जो कि अमेरिका के धृष्टतावाद से प्रभावित थे, ने ली ताचोउ और छन तुसियो के मार्क्सवादी विचारों पर कड़ा प्रहार किया। हुसरा बहुमत द्वारा समाज में पूर्ण परिवर्तन लाकर समस्याओं का निदान करना चाहता था। उसने लोगों को निरर्थक क्रांति के प्रति सचेत कराया और समाज की पांच बुराइयों, गरीबी, बीमारी, निरक्षरता, भ्रष्टाचार और अराजकता को खत्म करने के लिए शांतिपूर्ण और क्रमिक सुधारों पर जोर दिया। पृष्ठ संख्या 199। इस पृष्ठभूमि में मई 1919 ईस्वी के शुरू में यह खबर आई कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साय की संधि के अंतर्गत चीनी दावों पर कोई विचार नहीं किया गया। जर्मनी के शांतुंग क्षेत्र के अधिकारों को चीन को देने की जगह जापान को दे दिया गया, जबकि चीनी आशा कर रहे थे कि शांतुंग प्रायद्वीप उन्हें मिलेगा। वर्साय संधि के पश्चात चीनी विद्यार्थियों ने जापान और उसे मदद करने वाली शक्तियों का विरोध करने का संकल्प किया। 4 मई 1919 ईस्वी को लगभग 5,000 विद्यार्थी थ्यानमन मैदान पर एकत्रित होकर दूतावास क्षेत्र लीगेशन क्वार्टर की ओर अग्रसर हुए, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। विद्यार्थियों ने एक अधिकारी तसाओ रूलिन के घर को जला दिया, क्योंकि रूलिन को वे जापान का समर्थक मानते थे। हजारों विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार के विरोध में आवाज उठने लगी। आंदोलन को चलाने के लिए पेचिंग विद्यार्थी संघ की स्थापना की गई। अखबार तथा बुर्जुआ वर्ग के उदार दल ने विद्यार्थियों का पक्ष लिया। पूरे चीन में विद्यार्थी आंदोलन फैल गया। मई और जून 1919 ईस्वी में विद्यार्थियों, औरतों और श्रमिकों ने भी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। भविष्य के महान नेताओं माओ तजतुंग, चोउ अनलाय, लुओ चियालुन ने भी इस विद्यार्थी आंदोलन से ही अपना राजनैतिक जीवन आरंभ किया। आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने पेचिंग में मार्शल कानून लागू कर दिया। जापानी सरकार ने चीनी सरकार को आंदोलन खत्म करने को कहा। जापान ने यह मांग भी रखी कि बंदरगाहों पर सख्ती दर्शाने के लिए जहाजी बेड़े भेजे जाएं। विद्यार्थियों के पक्ष में शंघाई के व्यापारियों ने हड़ताल की। लगभग 60,000 मजदूरों ने इस हड़ताल में भाग लिया। सरकार को घुटने टेकने पड़े। जेल से अनेक विद्यार्थियों और बुद्धिजीवियों को रिहा किया गया। योद्धा सामंत तुआन छिरुएई द्वारा सहयोग प्राप्त 3 मंत्रियों को विद्यार्थियों की मांग पर मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया गया। आंदोलनकारियों ने सरकार को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करने से मना किया। चीन द्वारा संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने कहा कि यद्यपि यह बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है। मई चतुर्थ आंदोलन ने चीन को बौद्धिक क्रांति में उत्प्रेरक का कार्य किया। वर्साय की संधि से निराश लोग अब मार्क्सवादी समाजवाद की ओर झुकने लगे। कुछ लोगों ने पश्चिमी भौतिकवाद को प्रथम विश्व युद्ध का कारण माना, और इसे दूर करने के लिए उन्होंने चीनी अध्यात्मवाद पर जोर दिया। मई चतुर्थ आंदोलन का स्वरूप काफी विवादास्पद है। शुरू के उदारवादी इतिहासकारों ने इसे चीनी पुनर्जागरण माना है। मार्क्सवादी और उदारवादी रुझानों वाले इतिहासकारों का मानना था कि यूरोपीय पुनर्जागरण की तरह मई चतुर्थ काल भी चीनी आर्थिक व्यवस्था द्वारा मध्यकालीन से पूंजीवादी स्थिति में प्रवेश को व्यक्त करता है, और इनकी सांस्कृतिक मांगें भी लगभग एक थी। लेकिन पुनः जागरण और मई चतुर्थ आंदोलन के बीच अनेक अंतर थे। पुनः जागरण के समय में यूरोप वाणिज्यिक क्रांति का उदय देख रहा था, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद चीनी अर्थव्यवस्था का संक्रमण छोटे पैमाने पर कृषि से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर हो रहा था। इसके अलावा यूरोपीय पुनर्जागरण प्राचीन सभ्यता में रुचि को दर्शाता है, जबकि मई चतुर्थ आंदोलन के बारे में यह कहना उचित नहीं है। अंत में यूरोपीय पुनर्जागरण में अनेक महान कृतियां आंदोलन के पहले और बाद में लिखी गई, जबकि चीन की महान कृतियां मई चतुर्थ आंदोलन से सैकड़ों वर्ष पहले लिखी गई। कुछ इतिहासकारों ने मई चतुर्थ आंदोलन की तुलना यूरोपीय धर्म सुधार आंदोलन से करने की कोशिश की है, लेकिन 1920 ईस्वी के चीनी परिप्रेक्ष्य में यह बात असंगत लगती है। कुछ अन्य इतिहासकारों ने इसे डी ऑफ लोकोरुक की संज्ञा देकर 18वीं सदी के यूरोपीय प्रबोधन से तुलना की है, लेकिन मई चतुर्थ आंदोलन और प्रबोधन में मुख्य अंतर यह है कि जहां प्रबोधन में सामंत वर्ग का पतन उभरते हुए एक अन्य वर्ग के कारण हुआ था, चीन में मध्य वर्ग ने कोई भूमिका नहीं निभाई थी। कुओमिंतांग दल के अनुसार मई चतुर्थ आंदोलन योद्धा सामंतवाद और विदेशी शक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावनाओं का परिणाम था। राष्ट्रीय चीनी युवा दल ने मई चतुर्थ आंदोलन को राष्ट्रवादी विद्यार्थियों का आंदोलन माना है। उन्होंने मई चतुर्थ की देशभक्ति और जापान विरोधी भावनाओं को सराहा, लेकिन साथ ही इनके नए विचारों की निंदा की। शुरू के साम्यवादी इतिहासकारों के अनुसार मई चतुर्थ आंदोलन न तो रूसी क्रांति से प्रभावित था और न ही साम्यवादियों द्वारा चलाया गया था। वस्तुतः इसका स्वरूप प्रजातांत्रिक था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ तजतुंग ने इस विचार को नहीं माना। माओ के अनुसार एक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के रूप में मई चतुर्थ आंदोलन का आरंभ चीन के साम्राज्यवाद और सामंत बुर्जुआ प्रजातांत्रिक क्रांति के विरुद्ध विचारों का परिणाम था। माओ ने तीन बातों पर जोर दिया। एक, मई चतुर्थ आंदोलन ने साम्राज्यवाद और सामंत बुर्जुआ विरोधी प्रजातांत्रिक क्रांति को एक नए युग में प्रवेश कराया। दूसरा, राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग ने सर्वहारा वर्ग, प्रोलिटेरिएट और बुद्धिजीवियों के साथ एक संयुक्त मोर्चे के रूप में क्रांति में प्रवेश किया। बुद्धिजीवियों ने इस क्रांति में संयुक्त मोर्चे को नेतृत्व प्रदान किया। माओ का मानना था कि मई चतुर्थ आंदोलन चीन में पुराने प्रजातंत्र और नए प्रजातंत्र के बीच की विभाजन रेखा था। पुराना प्रजातंत्र आंदोलन से पहले के 80 वर्षों की और पुराना प्रजातंत्र आंदोलन से पहले के 80 वर्षों की और नया प्रजातंत्र आंदोलन के बाद के 20 वर्षों की विशेषता पर प्रकट करते हैं। पुराना प्रजातंत्र आंदोलन से पहले के 80 वर्षों की और नया प्रजातंत्र आंदोलन के बाद के 20 वर्षों की विशेषता प्रकट करते हैं। यद्यपि माओ मई चतुर्थ आंदोलन के राजनीतिक महत्व से अवगत थे, लेकिन उन्होंने इसे मुख्यतः सांस्कृतिक आंदोलन माना। उनका मानना था कि अपने सांस्कृतिक पक्ष के कारण मई चतुर्थ आंदोलन एक अप्रत्याशित घटना थी। माओ का यह भी मानना था कि रूसी क्रांति और लेनिन के आह्वान के कारण मई चतुर्थ आंदोलन हुआ था, अतः मई चतुर्थ आंदोलन सर्वहारा वर्ग के विश्व आंदोलन का एक भाग था।